आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
क्या बात है जगत, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो।
कौन, मैं?
हाँ तुम।
अरे प्रेमा, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। अब तुम ही बताओ प्रेमा, कि अगर तुम्हें एक ही फिल्म की टिकट पर दो दो फिल्मों के शो देखने को मिल जाए तो तुम्हें खुशी होगी या नहीं?
हाँ हाँ खुशी तो होगी, पर ऐसा होता कहाँ है जगत।
होता है प्रेमा, ऐसा ही होता है, और हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही होने वाला है।
मतलब
ये कि तुम भूल गई ना। देखो, आज हम अपने एपिसोड में श्रोताओं को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 25 एपिसोड का मजा दिलाएंगे।
25 एपिसोड?
आज का एपिसोड है एक रीकैप एपिसोड, जिसमें हमारे श्रोता हमारे धारावाहिक जीवन की राह के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि शुरू से लेकर अब तक के एपिसोड्स की पूरी कहानी सुन पाएंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
जी हाँ, और सबसे अच्छी बात है हमारे उन श्रोताओं के लिए जो हमारे कार्यक्रम के साथ देर से जुड़े थे। अब वो इस रीकैप एपिसोड को सुनकर सारी कहानी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आगे की कहानी का मजा उठा सकते हैं।
तो फिर जगत, इस नेक काम में देरी क्यों? चलो शुरू करते हैं हमारा आज का रिकैप एपिसोड।
बिल्कुल शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन की राह की कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स की जिंदगी से जिसके लिए जिंदगी का मतलब है सिर्फ मौज मस्ती, और उसका नाम है जयपाल। जयपाल पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है और पिछले 5 वर्षों से अपने परिवार से दूर मुंबई में रह रहा है। गांव में जयपाल की पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप हर पल अपने बेटे के गांव वापस आने की राह देखते रहते हैं, लेकिन वहां मुंबई में जयपाल अपने परिवार से मिलने के बारे में तो दूर, उन्हें घर के खर्च के लिए पैसे देने तक के बारे में नहीं सोचता और अपनी सारी कमाई रेड लाइट एरिया में उड़ा देता है।
काय करे जयपाल, तू अपनी सारी कमाई अपनी इस चंदा पर ही लुटा देता है। घर पर कोई नहीं है क्या?
ए चंदा रानी, ये जयपाल सिर्फ तेरा है, और जयपाल की सारी कमाई तेरी, तेरे ऊपर बिंदास खर्च करने का।
आइला देवा, अरे छोड़ मेरे को, बीवी बच्चे क्या करेंगे?
ये क्या? देख मेरे मूड नहीं खराब करने का, ये बीवी बच्चों का नाम लेके मूड नहीं खराब करना है।
अरे राजा, तू तो नाराज हो गया। अरे चंदा तो मजाक कर रही थी रे।
अच्छा। अरे तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ मेरी रानी।
दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जयपाल को उसके परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति किसी ने समझाया नहीं। जयपाल का दोस्त सूरज अक्सर जयपाल को समझाता है और उसे गांव जाकर परिवार से मिलने के लिए भी कहता है, लेकिन जयपाल हमेशा की तरह उसकी बात को बहाना बनाकर टाल देता है।
भाई जयपाल, लक्ष्मी से बात हुई थी मेरी।
उसे भी नहीं यार, कोई काम तो है नहीं। फोन किया था उसने?
नहीं, वो धनवंती से बात हुई थी तो वो भी उसके साथ थी, तब बात हुई।
अब बताओ, घर में माँ बाबूजी का ख्याल रखने की बजाय वो फोन करने आ रही है, कौन समझाया उसे?
समझने की जरूरत तुझे भी है जयपाल, आखिर कितना समय हो गया है, घर की कोई सूद तो ले ले यार, वे अकेली क्या क्या देखे, बच्चा थोड़ी है तू, और आजकल तेरी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं चल रही है, एक बार गांव चल तू।
भाई मैं सब समझता हूँ सूरज, मैं सब समझता हूँ, मगर काम छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। अब छुट्टी मिलेगी तभी तो जाऊंगा भाई, पैसा पास में नहीं है, अब खाली हाथ जाके क्या करूंगा वहाँ?
सब कुछ पैसे से नहीं होता भाई, एक बार शक्ल दिखाने ही चला जा, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, लक्ष्मी बता रही थी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है उनकी।
यार उसकी तो आदत है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। हाँ।
छोटी बात नहीं है ये मेरे दोस्त, तू यहाँ है 10 तरह के ख्याल आते हैं मन में।
तो मैं क्या यहाँ मस्ती मार रहा हूँ यार, हालत खराब है, कमाई है नहीं, लगता है यहाँ भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, काम ही नहीं है।
क्यों, तेरा स्टैंड वाला पैसे नहीं देता क्या?
हाँ हाँ देता है, पर कितना, मुंबई की महंगाई तो देख, कुछ बचता ही नहीं है यार।
मैं अगले महीने 2 हफ्तों की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। मेरी बात मान तो साथ घर चल।
अभी यार देख, तू भाभी से कहलवा दे कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और पैसे का इंतजाम करके 1-2 महीने में भिजवा देता हूँ भाई, ठीक है?
इधर मुंबई में जयपाल अपने परिवार की परेशानियों से बेखबर मस्ती भरी जिंदगी जी रहा था, तो वहीं जयपाल के ही गांव में रहने वाले मास्टर राजन को हर पल एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चों को उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता स्कूल के प्रिंसिपल को फूटी आंख नहीं सुहाती और वो हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है।
हाँ राजन सर, अब बताइए आप अपने तौर तरीके ठीक करेंगे या नहीं? ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपकी कई शिकायतें आ चुकी हैं। आपको वार्निंग भी दी जा चुकी है, फिर भी आप अपना रवैया ठीक करने को तैयार नहीं है, इसे क्या समझा जाए?
सर वो बच्चे हैं, उन्हें मार पीट कर या डांट फटकार कर ठीक करना उचित नहीं होगा। मैंने उनसे बात की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बचपन में तो इतना उत्साह रहता ही है सर।
आपको लगता है दुनिया में एक आप ही हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, हमारे क्लास में तो कभी ऐसा नहीं होता। बच्चे अगर शोरगुल करेंगे तो सीखेंगे क्या?
सर पिछले 25 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है, अब बच्चों को पहले की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की बात की जा रही है और ये सब हमारे टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है, वो ट्रेनिंग जो सरकार से हमें मिली है।
मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इस स्कूल में एक ही बात मायने रखती है और वो है अनुशासन। अनुशासन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस बात का ख्याल रहे कि आगे से ऐसा नहीं हो, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी पड़ सकती है जो हम चाहते नहीं। अब आप जा सकते हैं।
पर सर आप मेरी बात तो सुनो।
आप बेकार में बात ना बढ़ाएं, आपके लिए यही ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, इसे अभी निपटाना।
ठीक है सर, जैसा आप कहें।
तो दोस्तों देखा आपने कितना अजीब है कि कोई स्कूल में पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाता है और उसे रोका जाता है, और कोई ऐसा भी है जिसे गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, वो वहां पढ़ाई के अलावा सभी कुछ करता है।
जी हाँ दोस्तों, गांव के ही प्रधान का इकलौता बेटा विनोद शहर के हॉस्टल में रहता है। गलत संगत में रहने की वजह से वो गलत आदतों का भी आदी हो जाता है। वो अक्सर नशा करता है और हॉस्टल से बाहर रहता है। विनोद के पिताजी को ये बात मालूम चल जाती है, लेकिन विनोद अपनी बातों से सारी असलियत पर पर्दा डाल देता है।
बेटा विनोद।
जी पिताजी।
ये बताओ कि तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जिससे तुम्हारे पिता का नाम बदनाम हो?
मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या?
नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ।
मुझे पता है उस वार्डन ने ही कुछ कहा होगा आपसे।
हाँ हाँ कहा है, उसी ने कहा है, मगर मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है।
सब झूठ है पिताजी, दरअसल वो वार्डन सभी से जेब खर्च के लिए पैसे मांगता है। मुझसे मांगे तो मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझसे चिढ़ा हुआ है। आप कहो तो उसे सामने बुलाकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं?
नहीं नहीं, रहने दे, मुझे भरोसा है तुझ पर।
दोस्तों कहते हैं मौज मस्ती की भी एक सीमा होती है और हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। जयपाल ना ही नशा करना छोड़ता है और ना ही रेड लाइट एरिया में जाना। नतीजन जयपाल की तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन वो अपनी बीमारी की असली वजह से अनजान है।
क्यों, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ?
पता नहीं यार, हर दूसरे चौथे रोज बुखार चढ़ जाता है। अब शरीर में कमजोरी लग रही है और ऊपर से उल्टी दस्त से बुरा हाल है।
अरे तो तू डॉक्टर के पास गया कि नहीं?
हाँ यार, आज जाने की सोच रहा हूँ भाई, कल तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी।
चला जा भाई चला जा, और शरीर के मामले में लापरवाही करना तो बिल्कुल ठीक नहीं होता।
हाँ यार तू ठीक कह रहा है। अच्छा रमेश भाई, तू मालिक से कह देना यार, 1-2 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं फिर बिना नागा किए काम पर आऊंगा भाई।
ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन मालिक मानेगा नहीं, तू पहले ही बहुत छुट्टी ले चुका है। अच्छा मैं चलता हूँ।
जयपाल का दोस्त सूरज जयपाल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जयपाल को HIV टेस्ट की सलाह देता है। जयपाल अपना HIV टेस्ट करवाता है और जब जयपाल की रिपोर्ट आती है तो जयपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जयपाल तुम HIV पॉजिटिव हो।
क्या क्या नहीं डॉक्टर साहब, आप ध्यान से देखें ना मेरी रिपोर्ट, कहीं कुछ गलती है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
गलती जरूर हुई है और इसी का परिणाम है कि आज तुम HIV पॉजिटिव हो चुके हो।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। मेरे पीछे घर है, बूढ़े माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। ये सब क्या हो गया मेरे साथ डॉक्टर साहब? ये सब
संभालो अपने आप को जयपाल, संभालो। अरे अपने घर परिवार की ही खातिर सही तुम्हें हिम्मत रखनी होगी।
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ।
ठीक है।
उधर गांव में राजन की पत्नी शीला, जो कि उसकी दूसरी पत्नी है, एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। राजन अपनी पत्नी के इस फैसले को सहमति दे देता है और दोनों एक नए मेहमान को दुनिया में लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं।
मास्टर जी, आप भी पूरे भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। अब अगर हम बच्चे को जन्म देने के विषय में सोच रहे हैं तो मुझे डॉक्टरी सलाह तो लेनी ही पड़ेगी ना। और परिवार नियोजन के साधन के रूप में मैंने कॉपर टी अपनाई थी, उसे भी तो हटवाना होगा ना।
समझ गया मेरी समझदार बीवी जी, अब जल्दी तैयार हो जाइए।
समझदार कहने के लिए धन्यवाद, मैं बस यूं गई और यूं आई।
उधर शहर में विनोद नशे का इतना ज्यादा आदि हो चुका है कि वो उसके लिए लोगों से पैसा तक उधार लेना शुरू कर देता है। हॉस्टल का ही एक लड़का अजीत, जो कि विनोद को पैसे उधार देता है और नशे का सामान भी लाकर देता है, वो एक शाम विनोद से अपने पैसे वापस मांगने आता है।
विनोद, कितनी देर लगाता है दरवाजा खोलने में? कर क्या रहा था तू?
कुछ नहीं।
अच्छा सुन, वो तुझे 10,000 रुपए दिए थे मैंने।
हाँ।
वो मुझे वापस चाहिए।
हाँ?
ये क्या हाँ हूँ लगा रखा है तूने? मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए वापस चाहिए।
बाद में, अभी नहीं है।
मुझे कल शाम तक अपने पैसे वापस चाहिए।
लेकिन अजीत, इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगा?
मैं कुछ नहीं जानता, चोरी कर जेब का डाका डाल, लेकिन मुझे कल शाम तक मेरे पैसे वापस चाहिए। कल शाम तक, समझा?
सुनो अजीत, रुको अजीत, अजीत। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
चोरी कर जेब का डाका डाल।
हाँ हाँ, कर लूंगा चोरी, डाल दूंगा डाका।
अजीत के जाने के बाद विनोद को ये बात समझ नहीं आती कि वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करे, और इसी टेंशन की हालत में वो अपने दोस्त पिंटो के साथ और नशा करता है और नशे की हालत में बाहर चला जाता है। उसी रात हॉस्टल के वार्डन का कत्ल हो जाता है। पुलिस को वार्डन का पर्स विनोद के कमरे से बरामद होता है, जो कि विनोद के दोस्त पिंटो ने ही उसके लॉकर तक पहुंचाया था, और पुलिस विनोद को गिरफ्तार कर लेती है।
जनाब।
राधेश्याम, कहो।
जनाब, ये पर्स मिला है, इसमें उस वार्डन की फोटो भी लगी है।
ये तुम्हें कहाँ मिला?
जनाब, इस लड़के के लॉकर से।
विनोद।
सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वार्डन का ये पर्स तुम्हारे लॉकर में क्या कर रहा है?
सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
हवलदार, ले चलो इसे।
पिंटो।
ए, चल।
पिंटो बोलना इसको, मैंने कुछ नहीं किया।
अब जो भी बोलना है थाने में बोलना, चल के थारी भी मुंह खुलवाऊं मैं, चल।
इधर जयपाल अपने HIV पॉजिटिव होने से टूट चुका है। जयपाल का मालिक उसे उसके HIV पॉजिटिव होने की वजह से काम से निकाल देता है, लेकिन जयपाल का सबसे करीबी दोस्त सूरज उसे दिलासा देते हुए आगे की जिंदगी जीने के लिए समझाता है। सूरज के कहने पर जयपाल ICTC सेंटर में जाता है, जहां डॉक्टर से बात करके उसे जिंदगी की नई उम्मीद नजर आती है।
इधर गांव में राजन और उसकी पत्नी शीला डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर शीला को शहर के हॉस्पिटल से कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलती है, जिनमें HIV टेस्ट भी शामिल होता है।
शीला राजन के साथ जाकर शहर में स्थित हॉस्पिटल में अपने सारे टेस्ट करवाती है। शीला की सभी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सिवाय
एक के।
एक के?
कौन सी रिपोर्ट डॉक्टर? वो मैं तुम्हें अकेले में ही बताना चाहूंगी।
नहीं डॉक्टर, आप इनके सामने भी कह सकती हैं।
शीला, बात यह है कि तुम HIV पॉजिटिव हो।
क्या? लेकिन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है?
पुलिस इंस्पेक्टर विनोद से उस कपड़े के टुकड़े के बारे में पूछताछ करता है, जो कि उसे हॉस्टल में लाश के आसपास ही मिला था। विनोद उस कपड़े के टुकड़े को पहचान लेता है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में इंस्पेक्टर को कुछ बताना नहीं चाहता। उसे डर होता है कि उसकी बातें उसके नशे के आदी होने की सच्चाई को खोल देंगी, लेकिन विनोद पुलिस की सख्ती के सामने चुप नहीं रह पाता।
विनोद।
सर,
ये बताओ इस शर्ट के टुकड़े को पहचानते हो?
शर्ट? ये शर्ट सर, ये शर्ट का टुकड़ा तो
हाँ हाँ बोलो बोलो विनोद सर, ये शर्ट का टुकड़ा
सर, ये मेरी शर्ट का टुकड़ा नहीं है।
वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, अगर ये तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा नहीं है तो फिर किसकी शर्ट का टुकड़ा है?
सर वो मैं ये अजीत की।
अजीत?
विनोद की हालत देखकर पुलिस उसे नशा सुधार गृह में भेजने का फैसला लेती है। उधर सूरज शेखर को जयपाल के टैक्सी मालिक द्वारा उसे नौकरी से निकाले जाने की बात बताता है। शेखर की मदद से जयपाल एक वकील के जरिए अपने टैक्सी मालिक को एक कानूनी नोटिस भिजवाता है, जिसे देखकर टैक्सी मालिक घबरा जाता है।
इधर टैक्सी मालिक वीरभूषण और मंगल को कहीं से भी जयपाल को ढूंढ कर लाने की बात कहता है। उधर कॉलेज के हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आता है, सिद्धार्थ।
क्या हुआ?
लगता है कोई है। कौन कौन है वहाँ?
सर मैं हूँ सिद्धार्थ।
पिंटो और अजीत विनोद के गिरफ्तार होने से बहुत खुश हैं। दरअसल वार्डन का कत्ल विनोद ने नहीं अजीत ने किया होता है और कत्ल का इल्जाम विनोद पर लग जाता है। सिद्धार्थ की मुलाकात अजीत और पिंटो से होती है। अजीत और पिंटो को अपना नया शिकार मिल जाता है।
लगता है किस्मत भी हमारे साथ है पिंटो, इस बकरे को अंटे में लेना तेरा काम है।
उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अजीत भाई, पिंटो को अपना काम अच्छी तरह से करना आता है।
वीरभूषण और मंगल जयपाल को टैक्सी मालिक के पास ले आते हैं। टैक्सी मालिक जयपाल से अपने किए की माफी मांगता है और उसे वापस नौकरी पर आने के लिए कहता है, लेकिन जयपाल ये कहकर मना कर देता है कि उसे अब अपने परिवार के पास गांव जाना है।
मालिक मुझे वो क्या है ना मालिक, अब मैं अपना सारा समय अपने बीवी बच्चों को देना चाहता हूँ, बहुत सालों से उनसे दूर रहा हूँ। मालिक मैं चाहता हूँ कि मैं गांव चला जाऊँ, उनके साथ रहूँ और वहीं कोई अपना काम धंधा शुरू कर दूँ।
देखो जयपाल, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम करो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जब भी तुम शहर वापस आओ और तुम्हें काम की जरूरत हो फौरन मेरे पास चले आना, तुम्हारे लिए मेरा टैक्सी स्टैंड हमेशा खुला है।
जी मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों ये था जीवन की राह का अब तक का सफर। उम्मीद है आप इस सफर से आखिर तक जुड़े रहेंगे। और आइए दोस्तों अब हम आपको अपने कुछ ऐसे श्रोताओं से भी मिलवाते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को शुरू से सुनते आ रहे हैं।
कार्यक्रम नई दिशा का अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। इस कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी मिली, जैसे एड्स रोग, गुप्त रोग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और खासकर जो एड्स है, एड्स के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। और क्योंकि मैं इंटर की छात्रा हूँ तो जो एड्स से संबंधित जो जानकारी है वो हमारे सिलेबस से भी रिलेटिव है, तो इससे हमें जो अभी सिलेबस में एड्स का जो सिलेबस है उसमें भी मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारे नोट्स बनाने को मिल जाते हैं, तो मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और ये कहूँगी कि जो ये नई दिशा कार्यक्रम है यह कार्यक्रम एक नई दिशा में चले और एड्स के बारे में और भी जानकारी मुझे मिलती रहे।
अब तक कार्यक्रम नई दिशा का सफर बहुत अच्छा रहा और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे HIV एड्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला, जैसे कि एड्स कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है।
नई दिशा कार्यक्रम का सफर हमारा अच्छा ही रहा, बहुत सुनते हैं हम इस कार्यक्रम को जिसमें कि हम लोगों को एड्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, इसमें एड्स का विषाणु होता है उसे कैसे प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है इसके बारे में विशेष जानकारी मिली।
कार्यक्रम नई दिशा में अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, जैसे एड्स के बारे में बहुत सारे लक्षण बताए जाते हैं।
कार्यक्रम नई दिशा में मेरा अब तक का सफर बहुत ही मजेदार रहा, कई बार मुझे सुनने में परेशानी तो हुई लेकिन फिर भी मैंने समय निकाला और इस कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें HIV एड्स के बारे में और यौन रोगों के बारे में इस तरह की जानकारी मिली।
दोस्तों इस कार्यक्रम को तैयार करने का मकसद भी समाज को एक नई दिशा देना है ताकि वो HIV के प्रति जागरूक हो सके और जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उन्हें समाज में वही मान सम्मान दे सकें जो एक आम आदमी का होता है।
और वैसे भी प्रेमा कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करे।
और दोस्तों, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी जिंदगी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो खुद HIV पॉजिटिव हैं।
और उन्हें स्टूडियो में बुलाने का मकसद यही है दोस्तों कि उनसे बेहतर उनकी जिंदगी के बारे में कोई नहीं जान सकता।
तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने आज के सभी मेहमानों का।
आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले संक्षिप्त में अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
नमस्कार सभी श्रोतागण को, मेरा नाम भगवती है और मैं नई उमंग पॉजिटिव वेलफेयर सोसाइटी में इस वक्त काम कर रही हूँ।
मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं दिल्ली नेटवर्क DMP परिसर से हूँ।
सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर है और मैं दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल लिविंग विद HIV एड्स, एक नेटवर्क HIV पॉजिटिव लोगों का संस्था है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ।
बहुत बहुत स्वागत हरिशंकर जी, जयप्रकाश जी और भगवती जी। आज की चर्चा में हमारा विषय HIV पॉजिटिव लोगों से ही जुड़ा है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि अपने परिवार में और अपने मोहल्ले में, कह लीजिए आस पड़ोस में, दोस्तों को जब पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो क्या होता है?
देखिए, जो सवाल आपने पूछा बहुत ही अच्छा पूछा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही HIV पॉजिटिव होने का एक परिवार में पता चलता है, अगर हस्बैंड का पहले पता चलता है तो उसका आरोप सीधा एक औरत पर ही लगाया जाता है। परिवार में कहा जाता है कि इस औरत की वजह से ही हमारा बेटा इस बीमारी से ग्रस्त हुआ है और उसे उस परिवार में वो सहानुभूति, वो प्यार और वो अधिकार नहीं मिलते जो कि उसे एक आम रूप में मिलने चाहिए।
JP जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, मेन चीज ये है, लोग HIV एड्स के बारे में जानना नहीं चाहते। उनकी सोच ये होती है ये बीमारी हम लोगों को हो ही नहीं सकती, वो मेडिकल से ना जोड़ करके व्यक्ति के चरित्र से इस बीमारी को जोड़ते हैं।
एक तो अगर मैं फैमिली की बात करता हूँ, उसके घर वाले जो हैं, माता पिता हैं या उसके पति पत्नी के बीच की जो बात आती है, पहले तो उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि इसे क्या हुआ है। वो तो लोग यही समझते हैं कि इसे एड्स हो गया है और ये कुछ ही दिनों का मेहमान है और ये इस दुनिया से चला जाएगा। किसी बेटे को है या और लोगों को है तो लोग सोचते हैं कहीं मुझे ना हो जाए कहीं।
तो जैसे JP जी बोल रहे हैं कि उसको चरित्र से जोड़ा जाता है और सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इस व्यक्ति का चरित्र खराब है, उसको मेडिकली नहीं, लोग क्योंकि जानकारी नहीं है तो लोगों की, तो इसलिए जो है चरित्रहीनता की बात निकल के आती है। तो इसके चलते क्या जो सामाजिक सहारा, जो परिवार का सहारा एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो क्या खत्म हो जाता है?
यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही परिवार में पता चलता है तो अधिकतर देखा गया है कि फैमिली के अंदर उस HIV पॉजिटिव को बिल्कुल परिवार से अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे कि उसके खाने पीने का सामान, उसके बर्तन, उसके कपड़े, सब कुछ अलग कर दिया जाता है। माना जाता है कि इससे ये इन्फेक्शन हमें भी लग जाएगा और ठीक वैसे ही और उसका जो प्रॉपर्टी में राइट्स बनता है उससे भी उसे अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस व्यक्ति को HIV एड्स हो गया है और ये थोड़े दिन का मेहमान है और ये खत्म हो जाएगा, तो इसे इसका अधिकार नहीं देना चाहिए। इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स फैमिलीज में देखे गए हैं।
क्या मैं कुछ कहूँ?
प्लीज।
पहली चीज तो देखिए ये है कि जो उनके दिमाग में एक गलत सोच है कि HIV एक छुआछूत की बीमारी है, वो उनको दिमाग से निकालनी हो।
मैं अपने सभी श्रोतागण से मैं यही कहूंगा कि HIV अमीर देखता है ना गरीब देखता है, ना जात देखता है ना पात देखता है, ये सिर्फ बॉडी में जाने का रास्ता देखता है। तो मैं ही उन लोगों से कहूंगा कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति का भी समाज में जीने का अधिकार है, उन्हें भी आपके प्यार की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। साथ में मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आप खुद भी एजुकेटेड होइए इस HIV एड्स के बारे में, खुद भी जानकारी रखिए, दूसरों को भी जानकारी दीजिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, क्योंकि अभी इसका बचाव ही सबसे अच्छा और उत्तम तरीका है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आप लोग यहाँ आए और इस मुद्दे पे इतनी सकारात्मक चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम भी आपका धन्यवाद करते हैं मीनू जी, जो आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और हम लोगों की आवाज को सभी आम लोगों के तक पहुँचाया, उसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद जी।
हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर।
और अब जैसा कि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आपके लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आप एचआईवी के प्रति जागरूक हो सकें।
हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त।
अगले सप्ताह एचआईवी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार, नमस्कार।